का 16वां अध्याय अध्याय का शीर्षक है राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। और कल ही जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने जो है श्लोक जो है उस पर चर्चा की थी। श्लोक कल का बहुत ही महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण तात्पर्य था। तकरीब भक्ति की तीन सीधी सीधी परिभाषाएं जो है कल चर्चा में आई थी। और भक्ति को भक्ति का एक और नाम है भागवत धर्म, तो उसी पर चर्चा जब चल रही है। आज का जो तात्पर्य है तकरीबन 1.5 बजे से भी ज्यादा का तात्पर्य है और यही है। तो जो भक्त लोग मतलब पहले सुनते आए हैं उनके लिए आसान होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तोजयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी श्रीमदां स्वकथा कृष्ण पुण्याश्रवण कीर्तना हृदयंतस्थ ही अभद्राणि विरनोति सुहृत्सता। ओम अज्ञान स्मिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्वयम् रूपा कदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहम् श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् साग्रजातम् सगन रघुनाथान्वितम् तम् सजीवम् साद्वैतम् सा अवधूतम् परिजनसहितम् कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतराधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने दिनामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। तो श्लोक जो है उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। अनुवाद सुनिए, अनुवाद तात्पर्य काफी विस्तृत है। भागवत धर्म को छोड़कर शेष सभी धर्म विरोधों से पूर्ण है और कम फल की विचारधारा तथा तेरा और मेरा, आप और मैं जैसे भेदभावों से पूर्ण है। श्रीमद् भागवत के अनुयायियों में ऐसी भावना नहीं रहती, वे कृष्ण भावना में से पूरित रहते हैं और अपने को श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण को अपना मानते हैं। कुछ निम्न कोटि की भी धार्मिक पद्धतियां हैं जो शत्रुओं को मारने या योग शक्ति प्राप्त करने के लिए है, किंतु ये काम तथा द्वेष से पूर्ण होने के कारण अशुद्ध एवं नाशवान है। द्वेष पूर्ण होने से वे अधर्म से पूर्ण है। अक्सर का तो जब ट्रांसलेशन ऐसा निकल जाता है तो भला ढले उसके बाद कुछ शुरू हो, ये अपने आप में सब कुछ इस ट्रांसलेशन के अंदर। लेकिन ध्यान से देखिए इसके ट्रांसलेशन कुछ कई पार्ट है इस श्लोक के। बहुत ही अच्छे तरीके से महाराज का जब अभी जो चल रहा है उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब कुछ इस एक ही श्लोक में सब कवर कर लिया पूरी दुनिया को, जितना अभी धर्म के नाम पे चलता है। अभी रिसेंटली हमको किसी भक्त ने बताया, फिर हमने खुद भी जांच पड़ताल की, एक पिक्चर चली हुई है बाहर हे भगवान ओही ओ माय गॉड हे भगवान हाँ हे मेरे भगवान भाई यहां पर यही आ गया तेरा और मेरा ये हे मेरे भगवान हे तेरे भगवान मैं सारा इसी पे है। जैसे यहां पर बता रहे हैं कि सबसे पहले जो है कि भागवत धर्म से को छोड़कर यानी कि ये भक्ति मार्ग को छोड़कर श्रीमद् भागवत के आधार पर भक्ति मार्ग को छोड़कर जितने भी धर्म हैं वो विरोधों से पूर्ण है। धर्म के आपस में विरोध नहीं है, वो तो है ही, खुद के अंदर ही बहुत सारे विवादास्पद मुद्दे हैं। मुसलमान धर्म हिंदू धर्म तो अलग ही बात हो गई, हिंदू धर्म के अंदर ही बहुत विरोधाभास है, मुसलमान धर्म के अंदर बहुत विरोधाभास है, ईसाइयों के अंदर बहुत विरोधाभास है, सिखों के अंदर बहुत विरोधाभास है, है कोई भी ऐसा धर्म नहीं छूटा। क्यों नहीं छूटा? क्योंकि जिस तरह जैसे ही वो प्रेम धर्म इससे हरिनाम इससे इससे दूर हट जाएगा, जैसे ये एसेंस में नहीं होगा तो उसके अंदर सिर्फ विरोधाभास होंगे। जब धर्म के अंदर ही विरोधाभास है तो धर्म को पारण करने वालों की तो फिर बात ही क्या होगी, उसकी तो फिर हम बात ही नहीं करते, है ना। तेरा धर्म तू, जैसे आप बता रहे हैं तेरा धर्म और मेरा धर्म, तेरा और मेरा कौन कौन से हैं बताइए। अभी अभी तो हम तात्पर्य में तो बाद में चलते, हिंदू धर्म में कितने विरोधाभास है? हाँ पहले तो धर्म हो तो फिर विरोधाभास हो, अलग बात है, पर फिर भी कितने विरोधाभास है? तीन तो वैसे ही मुख्य मुख्य है, वे भगवान कौन है? अब ब्रह्मा जी को तो कोई नहीं पूछता, एक शिव जी है और एक देवी है और एक विष्णु है। नहीं गणेश तो चलो आदमी सोच लेता, चलो कोई बात नहीं शिव जी के अंतर्गत आ जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे, है ना। इसके अलावा बहुत है, अभी आगे हैं, इसके अलावा बहुत है। तो निरंकार तो फिर वो तो कहीं का भी नहीं है ना आकार उसका, तो हर जगह से ही धुतकारा हुआ है वो तो, वो तो चलो एक अलग बात है, एक बात बता, है ना। ये तो हो गया, अब ऐसा सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है ना कि भाई देखो तुम्हारा क्या है, जैसे बचपन से जोक सुना होगा ना, एक आदमी प्लेन नीचे गिर रहा था, एक्सीडेंट होने वाला था, उसको बोला चार बैठे हुए थे, हिंदू बैठा हुआ था, मुसलमान बैठा हुआ था, सिख बैठा हुआ था, ईसाई बैठा हुआ था, बोले तू किसको याद करेगा, वही तो डूब ही गया बेचारा याद करते करते, है ना, इतने नाम गिना दिए उसने। तो मजाक उड़ाते हैं हिंदुओं का, पर उतना ही मजाक बाकी धर्मों का भी उड़ सकते हैं। ईसाइयों में कौन सा काम है आप पता है, कितनी बढ़ जाती है ईसाइयों के अंदर, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट तो सारी दुनिया जाती है, इसके अलावा और बहुत सारे हैं, अमेरिका में कम से 20 से 25 प्रजातियां हैं, मेथोडिस्ट उसको क्या कहते हैं, मॉर्मन्स का एक वो न्यू चल नहीं फादर सम फादर क्या लैटर डे सेंट्स चर्च आता है, लैटर डे सेंट्स। आप सीरिया में चले जाइए, अब वहां पे मैमोनाइट क्रिश्चियंस मिल जाएंगे, आप इधर पूरे दुनिया में घूमिए 50 प्रकार के ईसाई मिलेंगे आपको, 50 प्रकार के ईसाई है। तो मुसलमानों में कौन से कम है? शिया सुन्नी अहमदिया इधर ये जो लोटस टेम्पल किन का है, अबाई क्या है, इसमें कोई कम है? ये मुख्य मुख्य है, ऐसे और भी हैं, इसी के अंदर और आ जाते हैं। अभी आप कहते हैं अब जैसे ये तबलीगी जमात ये अलग हो गया, और फिर अगर आप उसमें चले जाओ ये इसको क्या कहते हैं, ऐसे बहुत है, इनके अंदर बहुत सारे हैं। सिखों में कम है? सिखों में तो सिस्टम पहले होता था, अब तो सारे सरदार बराबर दिखते हैं, खुद को भी, दूसरों को तो दिखते ही थे खुद को भी, परंतु में सिस्टम कुछ और होता, पगड़ी से पहचाना जाता था, बड़ी अमृतसर का है ये, लुधियाना का है ये, पिंड का है, हाँ ये लोग, उसमें कौन से कम है? उसमें कोई कम है? पर जिनको बोल दिया कि भाई दशम गुरु के बाद 11वां गुरु नहीं होगा, तो कई सारे तो निकला है उसी में से, तभी उस टाइम पे तभी के निकले पड़े हैं ये निरंकारी बाबा और साको, ये जितने भी बाबा ये जितने भी हैं, सीधा सीधा बात कर रहे हैं, क्या हो गया फिर तब के निकले पड़े ये व्यास और ये जो भी है। अरे व्यास तो एक ही हुआ है, वेद व्यास, तुम्हारा नॉलेज नहीं कौन सा व्यास बन गया, समझ रहे क्यों है? जैसे ही भागवत धर्म से हट जाएगा ये शुरू हो जाएगा, जैसे ही हट जाएगा कोई धर्म कोई प्रणाली कोई भी मजहब कोई भी सिस्टम जो है इससे अछूता नहीं रह सकता, ये पहली लाइन है इसकी। फिर उसके बाद क्योंकि भेदभाव से पूर्ण होगा, क्यों हम आगे बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत के अनुयायियों में ऐसी भावना नहीं रहती, वे कृष्ण भावना से पूरित रहते हैं और अपने को श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण को अपना मानते हैं। बहुत बड़ी बात है, श्री कृष्ण को अपना मानते हैं और अपने को श्री कृष्ण का मानते हैं। इसकी भी सही पहचान में बहुत फर्क होता है। तो कई बार लोग कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, बहुत सीधी सी बात, श्री राधा रघुनंदन भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बल सुभद्रा महारानी की जय, गौरनिता की जय, तो हम भगवान को मानते हैं, तो पहचान तो वैसे कर नहीं रहे, फिर भी चलिए मानते हैं, ठीक है। तो ये कहने वाला आदमी जो है सरसरी तौर पर, हम भगवान को मानते हैं, हमारे किसी वैष्णव आचार्य ने ऐसे कोई गीत नहीं लिखा हम भगवान को मानते हैं, उल्टा लिखा है हे भगवान आप हमें अपना मान लीजिए। नारोत्तमे करो दया आपो नार बोली, हे भगवान के भक्त, हे भगवान आप हमें अपना मान लीजिए, मेरा काम बन जाएगा, मैं आपको जितना मर्जी मानता रहूं बैठ के, कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान को हमारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हम भगवान को मानते हैं, जैसे कि आपके मोहताज मान लेंगे। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल अलग से सिस्टम है, हो सकता है ये बातें समझ आए और समझ आएंगी भी नहीं जब तक बहुत ध्यान से नहीं सुनेंगे। तो ये इसलिए ये दूसरी लाइन है इसकी, हम वो कृष्ण को अपना और अपने को कृष्ण का मानते, वो ज्यादा जरूरी है। कुछ निम्न कोटि की भी धार्मिक पद्धतियां हैं, अब इसी से पता लग जाएगा, इस लाइन से पता लग जाएगा, ठीक है, नाम नहीं बताया पर प्रिंसिपल बता, सिद्धांत बता दें। कुछ निम्न कोटि की भी धार्मिक पद्धतियां हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है, हैं। ये दूसरा सिस्टम होता है, ये भागवत धर्म का मतलब है, वो मानती है कि और भी धार्मिक प्रणालियां हैं, जो निम्न कोटि की प्रणाली होगी वो मानती है सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, समझ रहे हैं। तो निम्न कोटि की होगी बोलेगा यही है बस, माई वे और हाई वे, मेरा तरीका है, यही तरीका है, इसको मानने तो मानिए, नहीं तो आप जहन्नम जाएंगे, है ना, यू आर हीथन और या कुछ भी ऐसे कुछ भी बोल देंगे, नारकवासी होगी कुछ। तो उसमें वो कैसे पहचानी जाती है, जो शत्रुओं को मारने या योग शक्ति प्राप्त करने के लिए सीधा डायरेक्ट, शत्रु को मारने वाला कौन सा धर्म होता है, एग्जैक्टली, वामाचार जिसम कहते हैं, ब्लैक मैजिक धर्म होता है पूरा, वो तो बहुला देवी की पूजा हिंदुस्तान में होती है, ऐसे बहुत सारे देवी देवता हिंदुस्तान के बाहर भी है, समझ रहे हैं, तो हिंदुओं में होता है ना, पांच में से दुनिया में पांच में से एक आदमी हिंदू है ना, बाकी चार क्या लगते हैं, वो नहीं करते सब, वो क्या लगता है, वो नहीं करते, वो भी हमाम में उतने ही नंगे जितने हम इधर सब होते, टोना टोटका ये सब होते, हर जगह होते, हिंदुस्तान से ज्यादा होते, ये भी सुन लीजिए। अब क्या है, हम लोग हिंदुस्तान में रहते, कुएं के मेंढक में लगते यहीं पे होते हैं, हिंदुस्तान से बाहर और ज्यादा होते और ओपनली होते। आपको मालूम है, आपको आपकी जान देने के लिए बता दें, कुछ म्यूजिक बैंड होते साफ साफ बता दें सैटनिस्ट, यानी कि हम शैतान की पूजा करते हैं और गाते हैं शैतान का नाम, आओ सुनो, हजारों की तादाद में टिकते व्यक्ति हैं, आप किस हवा में हो, समझ आई बात, तो सीधा साफ होता है सिद्धांत। तो ये इस पर बेस्ड है, बहुत अच्छी खासी तादाद है इसकी, क्यों बहुत अच्छी खासी तादाद है, क्योंकि कुछ तथाकथित धार्मिक लोग भी जो है, जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, सब इसके अंदर चक्कर में होते, ये सबसे बदमाश होते, ना इधर के ना उधर के, हां एक तो है धार्मिक, और धर्म के भी कई परिभाषाएं हैं, पर ये आदमी जो होता है ये बिन पहने का लोटा होता है, इतना ये बोलता है कि मैं शैतान की पूजा करता हूं और नहीं बोलता है मैं भगवान की पूजा करता हूं, करता शैतान की पूजा, ये होता है ऐसा, और ऐसे ये तादाद बहुत बड़ी होती है, और ये तादाद आपको अपने घर के अड़ोस पड़ोस में मिल जाएगी, घर अपने घर के अंदर में मिल जाएगी। जब काम नहीं बन रहा होता तो हम खुद ही शुरू हो जाते हैं सब चीजों पर, हाँ सब, किससे क्या होता, इससे कुछ होता थोड़ी है, अभी पता चलेगा जब यमदूत आएंगे, जब पता वो बताएंगे, अभी नहीं पता चलेगा। फिर आगे, या योग शक्ति प्राप्त करने के लिए, इसमें क्या है योग करने में, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है योग करने की बात नहीं, योग शक्ति प्राप्त करने की बात हो रही है ना। आग बंद करके जो दिखाई देने लग जाए, कुछ सुनाई देने लग जाए, एक तो पूरा एक तो पूरा तबका है बहुत बड़ा, हिंदुस्तान से बाहर बहुत फेमस हुआ, हिंदुस्तान में भी, अभी हिंदुस्तान में फेमस है, उनके चेले तो पूरे दुनिया में फेमस है। वो एक योग पद्धति सिखा देते हैं, उसे नाम नहीं बताऊंगा, उस योग पद्धति में क्या है कि बोलते कि आप उड़ने लग जाओगे जमीन से थोड़ा ऊपर, अब उड़ना तो कोई बिरला, उनका जो गुरु था जिसने सिखाना शुरू किया सिर्फ वही उड़ता था और कोई नहीं उड़ा सकता उसके बाद। बाकी सब लोग पता है कैसे योग पद्धति दिखाते, आपको दिखाता हूं, ये देखिए पता क्रिया कैसी है, ऐसी वाली क्रिया, यही बैठे बैठे उड़ने का प्रयास करते हैं और हजारों की तादाद में, और उनका चेला पूरा अभी पूरा हिंदुस्तान में तो फेमस है, दाढ़ी वाले बाबा हैं, बड़े मीठे बोल बोलते हैं। तो ये योग शक्ति प्राप्त करने की इच्छा, आदमी बैठे बैठे ही जो है आसन पे उड़ने लग जाए, जब उड़ेंगे जब भी जब देखी जाएगी। तो ये अच्छा, इनको हिंदू कहलाते, ये सारे हिंदू कहलाते हैं, ठीक है। किंतु ये काम तथा द्वेष से पूर्ण होने के कारण अशुद्ध एवं नाशवान, साफ सुथरा, इसके अंदर द्वेष है और इसके अंदर काम 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 वासना, द्वेष पूर्ण होने से वे अधर्म से पूर्ण है। किसी भी धर्म के अंदर जैसे ही द्वेष दिखाई दे तब वो अपूर्ण होगा। धर्म व्यक्ति के अंदर की बात नहीं हो रही है, धर्म के अंदर ही बात हो रही है, व्यक्ति तो बहुत बात की बात है, व्यक्ति के अंदर तो द्वेष होगा ही होगा, बात जीव का मतलब उसके अंदर द्वेष होगा जब भी वो जीव है, पर धर्म के अंदर भी द्वेष, ये बात है। अब देखिए तात्पर्य, भागवत धर्म विरोधाभासों से रहित है, भागवत धर्म में विरोधाभास नहीं, कैसा विरोधाभास, विरोधाभास का कैसा मतलब, जैसे एक आपको समझा दें, जैसे भागवत धर्म का मतलब है भगवान, ठीक है, भगवान के बनाए हुए कानून जिसके भगवान को प्राप्ति कर, की प्राप्ति करी जा सकती है। अब वो चीज यानी भगवान जो कि आध्यात्मिक है, कोई आदमी भौतिक जगत में बैठ के, कोई बात नहीं भौतिक जगत में बैठे कोई वो बड़ी बात नहीं, भौतिक जगत में बैठ के भौतिक स्तर पर रह के आध्यात्मिक चीज को जो है उसका बखान और उसको समझाने की, उसकी परिभाषा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपने आप में विरोधास्पद है, नहीं समझ रहे, मैं मान नहीं सकता समझ रहे पहली बार। भौतिक एक आदमी भाई तेल और पानी है, ठीक है, अब तेल है और पानी, अब तेल में बैठ, अब तेल में हो जिस चीज को तेल में डाला हुआ है, ठीक है, और वो तेल तेल में क्या घुल सकता है, तेल ही घुल सकता है, ठीक है, एक तेल के अंदर आपने दूसरा तेल घुला हुआ, उस तेल को निकाल के अब दूसरे तेल में पानी में डालने की कोशिश करोगे कोई फर्क पड़ेगा, तेल तो तेल ही माना जाएगा। तो उसी टाइप से चाहे ये वाला तेल हो, बड़ा वाला, ज्यादा वाला तेल हो, ज्यादा तेल में कम तेल आपने मिले, एक भाई भाड़ आपके पास उसका है, मान लीजिए सरसों का तेल है, उसमें आपने जो है एक बोतल ऑलिव ऑयल मिला दिया तो मिल जाएगा, पर उसको ऑलिव ऑयल को निकाल के पानी में अलग से डालोगे क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, चाहे बड़ा वाला भाड़ हो पूरे सरसों का वो भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज अलग है, अलग है, तेल के अंदर की प्रजातियां हो सकती है पर तेल तेल ही है। तो उसी टाइप से अब वो भौतिक चीज है, वो भौतिक चीज, बंदा भौतिक है, उसकी चेतना भौतिक है, उसका मन भौतिक है, उसका शरीर भौतिक है, उसकी इंद्रिय भौतिक है, तो उसका जो कार्यकलाप होगा वो भौतिक होगा, उससे जो है वो आध्यात्मिक चीज की परिभाषा देने की कोशिश कर रहा है, आएगा ही नहीं, आध्यात्मिक चीज की परिभाषा आध्यात्मिक जगत से आना पड़ेगा, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक है वो दे सकते, इसे विरोधाभास कहते हैं, और इस आदमी को भौतिक जगत में बहुत बड़ा जो है फिलोसोफर कहते हैं, जो भौतिक जगत में भौतिक स्तर पर बैठ के भौतिक इंद्रिय मनों के द्वारा भौतिक परिभाषा से आध्यात्मिकता की आध्यात्मिकता क्या है यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को दार्शनिक कहते हैं, ज्ञानी दार्शनिक, बेसिकली निपट मूर्ख होते हैं। हाँ, वो एक्चुअली इतना निपट मूर्ख नहीं है जितना वो है जो उसको उसको दार्शनिक कहते हैं। तो ये अब इसमें अब प्रभात बता रहे हैं, इसमें तुम्हारा धर्म या मेरा धर्म जैसा विचार नहीं मिलेगी। भागवत धर्म का अभिप्राय है भागवत भगवान के आदेशों का पालन, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, ईश्वर एक है और वह सबका है। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं लाइन आपको और बिल्कुल साफ साफ, ये आखिरी लाइन, ईश्वर एक है और वह सबका है। हाँ भैया देखिए पापा क्या बता रहे हैं अंग्रेजी में, गॉड इज वन एंड गॉड इज फॉर एवरी वन, भगवान एक है और सबके लिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि उन्हीं की शरण में जाए। धर्म का यही शुद्ध मत है। धर्म क्या है जानिए, तो ईश्वर के आदेशों से ही धर्म बनता है। ईश्वर के आदेश धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भागवत धर्म में तुम्हारा क्या विश्वास है और मेरा क्या विश्वास है इसका कोई प्रश्न नहीं उठता। भगवान मुझे विश्वास है कमाल, कई लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि भगवान जो है वो एक एक विश्वास है ना, या भगवान जो है इंसान के मन की उपज है। बेसिकली एक भगवान चाहिए था तो बना दिया। तो ये और ये नहीं कुछ तो फिर और आगे, आप जैसे वही जो भी हम बात कर रहे थे अभी जो पिक्चर निकली उसमें स्टोरी बोर्ड देगा उसके मुताबिक ये कि भगवान तो ऐसा होना चाहिए, भगवान ऐसे हैं कमाल। हाँ सर उसमें से बता रहे कि स्टोरी बोर्ड मैंने पढ़ा कि उसमें जो हीरो है वो भगवान है, भगवान का रोल अदा किया उसने। तो और वो पैंट कमीज में घूम रहे हैं और बाइक चला रहे हैं, तो कहते हैं कि भाई भगवान, लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान का मतलब उसकी धोती होनी चाहिए, बांसुरी होनी चाहिए। तो भाई ऐसा थोड़ी है, जरूरी नहीं है। हाँ जरूरी नहीं है, पर हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जैसे भगवान अपने आप आ रहे हैं बता रहे, पहले उसी बात को मानेंगे, जरूरी है या नहीं है बात की बात है। हाँ समझ रहे, कोई पूछ सकते क्या भगवान जींस नहीं पहन सकते, पहन सकते क्यों नहीं पहन सकते, इंसान पहन सकते भगवान पहन सकते, पर क्या पहनते हैं ये बात होती है, सकते की बात नहीं हो रही, होता कैसी बात हो रही भाई। यहां पे मेजॉरिटी जो है सब यहां प्रभुजीत बैठे, आप लोग साड़ी पहन सकते हो ना, पहन सकते हो, पहनते हो क्या, वही वाली बात हो रही। तुम्हारा विश्वास मेरा विश्वास वो प्रश्न नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, ये मतलब है भगवान पर विश्वास का मतलब भगवान के आदेशों का पालन। पहले उसके लिए ये तो बताओ आदेश क्या है। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन, श्री कृष्ण अर्थात ईश्वर जो कुछ भी कहें उसको संपन्न करना चाहिए, यही धर्म। यदि वास्तव में कोई कृष्ण भक्त है तो उसका कोई शत्रु नहीं होता। लेकिन फिर ध्यान से सुनिए लाइन को, कई बार सुनोगा हाँ उसका शत्रु नहीं, उसका शत्रु हो सकता है, हाँ हो सकता है, वो किसी का शत्रु नहीं होता। जमीन आसमान का फर्क है, आपकी किसी से दुश्मनी नहीं है, अदावत नहीं है, किसी की हो सकती है आपसे। आपने सड़क पर जाते हुए किसी को एक्सीडेंट नहीं मार पड़ा, कोई आपका एक्सीडेंट मार सकता है, वही चीज। तो भक्त होता है भक्त के तरफ से उसके जानेब से वो किसी से जो है दुश्मन नहीं पालता, और फिर भी भक्त के दुश्मन हो सकते हैं, होते हैं। भक्त भक्त के लिए एक बोला गया है अजात शत्रुव, अजात शत्रुव का मतलब है कि जन्म जात उसका उसका कोई शत्रु नहीं है, यानी कि बाद में नहीं बनाया उसने, जब से पैदा हुआ तब से उसने उसने किसी से दुश्मनी नहीं की, पर उसके हो सकते जन्म से दुश्मन हो। क्योंकि इसका एकमात्र कार्य अन्यों को श्री कृष्ण या ईश्वर के प्रति समर्पित करना है, तो भला उनके उसके शत्रु कैसे होंगे? ये वजह उसका काम ही यही है कि वो हर किसी को भगवान से जोड़ेगा, तो उसका शत्रु कैसे, उसका कोई उसकी तरफ से कौन? यदि कोई हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म या अन्य किसी धर्म का पक्ष लेता है तो संघर्ष हो सकता है, तब लड़ाई होगी। इतिहास बताता है कि ईश्वर की स्पष्ट संकल्पना के बिना विभिन्न धार्मिक संप्रदाय परस्पर लड़ते भिड़ते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। 1947 में पहली बार राइट्स नहीं हुए थे, जब से ये अलग अलग धर्म का सिस्टम बनाए भागवत धर्म को छोड़ के तब से लड़ाइयां हो रही है। ऐसा नहीं है, ये भी सुन लीजिए, ऐसा नहीं है मुसलमान आए थे बाहर से तलवार के जोर पे उन्होंने कर लिया, उससे पहले तलवारें नहीं चलती थी हिंदुस्तान में, बहुत तलवारें चलती थी। आप साउथ इंडिया में जाइए, आप वहां पर कहानियां सुनने को मिलेंगी। साधु समझते, साधु 20-20 हजार साधु, 20-20 हजार साधु भिड़ते थे आपस में त्रिशूल तलवारों में लेके और बंदूकें भी। ये हिंदुस्तान का, ये जैसे भागवत धर्म से हटते हैं उसके बाद ये होते हैं, और वो सिस्टम अभी भी है। अभी कुंभ होने वाला है, 10 तारीख को चले जाइएगा, पता लग जाएगा। इसीलिए उसको कहते हैं अखाड़े, 7 अलग अलग अखाड़े। अखाड़े का मतलब क्या होता है? जहां कुश्ती मिलती है। तो ये सिस्टम कोई किसी हवा में मत रही है कि बाहर से आए थे तब उन्होंने तलवारें चलाई हैं, यहां पहले वैसे ही बहुत तलवारें चलती थी, और जहां से वो आए हैं बाहर से वहां भी बहुत तलवारें चलकर उनको लात मार के वहां से भगाया था, तब यहां आए थे। उनकी तलवार वहां नहीं चली थी, यहां चले। मैं नहीं यहां पे तलवार चलता, वहीं से तलवारें चलाते जा रहे थे। तो तलवारें चलती रही हैं और चलती रहेंगी जब तक ये भागवत धर्म नहीं हो। ऐसे धर्म जो परमेश्वर की सेवा पर ध्यान नहीं लगाते, कि परमेश्वर पर ध्यान लगाने की बात नहीं हो रही, परमेश्वर पर ध्यान लगाने वाले बहुत बधेरे मिल जाएंगे आपको, यहां बात हो रही है परमेश्वर की सेवा पर ध्यान नहीं लगाते उनकी बात हो रही है। वे नश्वर होते और द्वेष से पूर्ण होने के कारण अधिक काल तक नहीं चल पाते। ये इसलिए कई बार जो है खासतौर पर कई लोगों को जो है, जो खासतौर पर धर्म के ठेकेदार होते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के ठेकेदार हो, मुसलमानों के हो, ईसाइयों के हो, सर्वकाल जो है यही बस यही एक वो है सबके दिमाग में, जो जहन में जो यही बात घूमती रहती है, ये तो धर्म जो ना बड़ा घटता जा रहा है ना, लोग बड़े अधर्मी बनते जा रहे हैं, है ना, हिंदू धर्म जो खत्म होता जा रहा है ना, हिंदू धर्म वाले को लग रहा है कि हिंदू धर्म खत्म होता जा रहा है, मुसलमान का धर्म बढ़ता जा रहा है। वो मुसलमान से पूछो, बोलता है कि हिंदुओं का दबदबा चलता रहा है, क्या हम पहले यहाँ पे राज करते थे, हम लोग यहाँ राजा बादशाह सुल्तान हुआ करते थे, अभी कहा हम लोग ठेला लगाते नीचे। उससे पूछो ये बोलेगा, इससे पूछो ये बोलेगा, हिंदू से पूछो बोलेगा कि मुसलमानों का रिजर्वेशन बढ़ता जा रहा है, ये सारे मुसलमान बढ़ जाएंगे पूरे सरकारी दफ्तरों में, हमें बाहर निकाल देंगे। यही क्यों लग रहा है? क्योंकि ये द्वेष से पूर्ण तो नश्वर होंगे, ऐसा नहीं लग रहा है, हो रहा है, ये भागवत बता रहे ऐसा ही होगा। जैसे ही आपका भागवत धर्म नहीं होगा तो आपका अपना अपना धर्म जो है, जिसके पीछे आप इतराते हो और आप लगा के घूमते हो और जाकर अपने सर्टिफिकेट में छापते हो, ना आप रहोगे, ना आपका धर्म, ना आपका सर्टिफिकेट। अतः मनुष्य को चाहिए कि यह मेरा विश्वास या तेरा विश्वास जैसे विचारों को त्याग दो। भलाई इसी में हर एक मनुष्य को ईश्वर में विश्वास करना चाहिए और उसी के शरण में जाना चाहिए। ये भागवत धर्म, इसे भागवत धर्म कहते हैं। वैसे एक नाम है, एक नया धर्म नहीं। भागवत धर्म कोई आडंबर नहीं, भागवत धर्म में कोई आडंबर नहीं, इसमें तो कृष्ण के से प्रत्येक वस्तु के संबंध का अनुशीलन किया जाता है। ईशावास्यम इदं सर्वम्, वैदिक आशाओं के अनुसार, आदेशों के अनुसार सर्व कल्प इदं ब्रह्म, ये तो ये उपनिषदों का वाक्य है, सर्वकल्प इदं ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद, सभी वस्तुओं में ब्रह्म विद्यमान, ब्रह्म मतलब भगवान, हर वस्तु में। भागवत धर्म परमेश्वर की इसी उपस्थिति को ग्रहण करता है। इसको ग्रहण करते हैं भगवान की हर जगह पर उपस्थिति, बस मौजूदगी। वह इस संसार की प्रत्येक वस्तु को मिथ्या नहीं मानता। प्रत्येक वस्तु ईश्वर की सेवा में कुछ न कुछ उपयोगी है। उदाहरणार्थ इस समय हम माइक्रोफोन में बोल रहे हैं, बोलकर लिख रहे हैं, प्रभात अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसका अंकन होता जा रहा है। इस प्रकार हमें ज्ञात है कि मशीन भी किस प्रकार पर ब्रह्म से संबंधित हो सकती है। मशीन के अंदर जो है पर ब्रह्म का वास होता है, जैसे अंग्रेजी में हो सकता है सुना होना तो मालूम है, गाना ऐसे गाने भी आए हुए हैं पहले और कंसेप्ट भी आए हुए हैं, घोस्ट इन द मशीन। घोस्ट इन द मशीन किसको कहते हैं मालूम है? टीवी को कहते हैं। पहली बार टीवी आया था तो लोग कहते थे घोस्ट इन द मशीन, डब्बे के अंदर जो आदमी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? घोस्ट इन द मशीन, मशीन के अंदर भूत है। मशीन क्या है? हाथ लगाते हैं जो इसके अंदर भैया आदमी तो भूत ही है वो, और वो दिखाई देता है पर पकड़ में नहीं आता। भूत भी तो ऐसे ही होते हैं, दिखाई देते पकड़ में नहीं आता, तो सेम चीज है घोस्ट इन द मशीन, ठीक है। तो ये पर वैदिक सिस्टम के अनुसार इज नॉट घोस्ट इन द मशीन, परम ब्रह्म इन द मशीन, ठीक है, भगवान मशीन के अंदर होते हैं। क्योंकि हम इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं अतः यह भी ब्रह्म है। ब्रह्म सर्वकाल में ब्रह्म का यही अर्थ है। प्रत्येक वस्तु इसलिए ब्रह्म है क्योंकि वह भगवान की सेवा के कार्य में आ सकती है। कुछ भी मिथ्या नहीं है, सब कुछ सत्य है। चलो, कुछ भी मिथ्या नहीं है, सब कुछ सत्य है, ठीक है। देखना पड़ेगा कौन सी चीज कहां लगती है। भागवत धर्म को सब धर्मों से में सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है, ये सब इस्तेमाल किया, क्योंकि इसके अनुयायी किसी के भी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भगवान किसी के प्रति भी जो है द्वेष मतलब ना रखना, मतलब क्या है बेसिकली द्वेष ना रखना, ये वो ऐसे जो धर्म की हानि होती है। धर्म की हानि कहां से होती है ये तो पता है सबको। हाँ ग्लानि होती है, जैसे धर्म की हानि होगी तो भगवान आएंगे, वो तो ठीक है, होना कैसे शुरू होता है? धर्म है भगवान के द्वारा बनाई गई, भगवान के द्वारा बनाई हुई चीज वो भी घट जाती है, फिर क्या फायदा? हाँ कोई भी बोलेगा ऐसे, भगवान की बनाई हुई चीज भी घट जाती है, ये कोई बात हुई? हमारी बनाई हुई चीज तो चलो नश्वर है, बात समझ आती है, ये धर्म भी नश्वर होते हैं, ये भी घट जाता है। हाँ मतलब क्या ने कहा प्रचार नहीं होता, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। बेसिकली क्या प्रचार कम नहीं होता, सब चीजों के पीछे एक स्रोत, इसका एक एक, एक पिताजी है सबके। हाँ द्वेष का प्रवेश होने के बाद ये सारी चीज शुरू होती है, इसीलिए कहा जाता है प्रचार ना करना जो है सबसे बड़ा द्वेष है। क्योंकि आपके पास कोई चीज है, आप उसको नहीं दे रहे और वो चीज सिर्फ आपकी नहीं है। हमने पहले एक बार चर्चा की थी, आपको बटोरने का अधिकार नहीं है। आपके भगवान है तो सबके भगवान है, तो जितना भगवान पर आपका हक है उतना दूसरों का हक है, तो आप उसका हक दे नहीं रहे उसको तो उसका हक मार रहे हो, आप खाली नहीं जा रहे। वो नहीं कि प्रचार नहीं हो रहा तो उसका नुकसान हो रहा है, प्रचार नहीं कर रहे आपका ज्यादा नुकसान है, क्योंकि आपने माल लगाया हुआ है दूसरे का, तो माल पैसा नहीं है, भगवान ही लगा लिया आपने। पहले तो लक्ष्मी दबाते थे, लक्ष्मी दबा दबा के जो इतनी हिम्मत बढ़ गई है, अब लक्ष्मीपति को ही दबा दिया आपने, तो वो हजम नहीं होगा। तो ये तो क्यों है ये धर्म का ह्रास होना, उसका घटना, दया क्षमा। धर्म का मतलब क्या है? चार चीज है ना, धर्म का क्या मतलब होता है? धर्म का मतलब चार चीज है, धर्म चार चीजें धर्म बनता है, दया तपस्या और तो क्या कहते हैं नहीं शौच शुद्धता और सत्यता। धर्म का ये मतलब, धर्म धर्म क्या होता है? धर्म धर्म का मतलब चार चीजें होती है, मेरा धर्म तेरा धर्म, धर्म का मतलब चार चीज, चार चीजें हैं उसके अंदर। एक नंबर का झूठा आदमी बड़ा है धर्म की बात करने वाला। तो ये चार चीज है कि चार चीज, धर्म का मतलब धर्म घटने का मतलब चार चीजों का घटना। तो ये चार चीजें कब घटती हैं? जब कोई, क्यों घट रही है? क्योंकि कोई ऐसा प्रैक्टिकल, कोई ऐसा व्यावहारिक जरिया नहीं है, कोई व्यावहारिक ऐसा तरीका नहीं है जिससे जो है आदमी अपने आप को शुद्ध कर सके और शुद्ध किससे कर सके, क्या शुद्ध करना है, द्वेष से शुद्ध कर सके। शुद्धिकरण क्या होता है, सोल, जैसे कहते हैं सोल इज प्यूरिफाइड, तो आत्मा का शुद्धिकरण होता है। आत्मा का क्या शुद्धिकरण होना, आत्मा आध्यात्मिक तो वैसे ही शुद्ध है, नहीं, आत्मा शुद्ध है, आत्मा के ऊपर आवरण है तो उसका शुद्धिकरण, इसलिए दो अलग अलग शब्द है। तो एक होते एक चीज शुद्ध है और एक है शुद्धिकरण, दो अलग अलग चीज। करण का मतलब है प्रक्रिया, प्योर एंड प्यूरिफाइड। प्रभुपाद जी अक्सर ये दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ऐसे नहीं कि चल प्योर शब्द इस्तेमाल करके उकता आ गए तो प्यूरिफाइड इस्तेमाल कर दिया, दो के अलग अलग मतलब। प्योर का मतलब है जो शाश्वत रूप से शुद्ध है और प्यूरिफाइड का मतलब है जिसको शुद्ध करने की जरूरत है। तो ये हमारे ऊपर आ गई ये बात। तो ये तो जब तक कोई व्यक्ति ये हर विश्व महामंत्र का जप करके शुद्ध नहीं होगा, वो जब कैसे होगा, प्रभुपाद भागवतम के 12वें स्कंध में बता रहे हैं प्रभुपाद के शिष्यगण कि मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, इन एन ऑथोराइज प्रोग्राम ऑफ स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट, चैंटिंग शुड बी एन ऑथोराइज प्रोग्राम फॉर स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट। जप का मतलब है एक प्रामाणिक विधि, यानी कि प्रामाणिक प्रोग्राम का मतलब है कि आपके पास एक प्रामाणिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक सुधार का एक प्रामाणिक कार्यक्रम, इसे जप कहते हैं। जप का मतलब है जिसके अंदर आध्यात्मिक उन्नति का एक प्रामाणिक कार्यक्रम होना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा मन कर रहा मैंने जैसे तैसे जप कर लिया तो जैसे तैसे जप का जैसा तैसा फल मिलेगा, ठीक है ना। तो नहीं जैसे एक बार ऐसे बात केशव बाबू बता रहे थे, क्या था कि वो बताते कि वो आप लोगों ने देखा होगा हिंदुस्तान में इतना नहीं चला फिर भी टीवी में तो दिखी जाता है, न्यूज पेपर में आ जाते हैं, तो पंख स्टाइल कहते हैं। पंख का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे बाल होते हैं ऐसे बैठे होते हैं, पंख का मतलब बाल खड़े हो गए ऐसे ऐसे खड़े होते हैं। तो केशव बाबू बताते होता कि खड़े होते हैं जब शेव करते हैं ना, तो आड़ा तिरछा शेव करते हैं तो खड़ा ही निकलेगा फिर वो, तो हेड शेव करने से काम नहीं चलेगा, आड़ा तिरछा शेव करेगा तो आड़ा तिरछा निकलेगा। तो वही कहने का मतलब सेम चीज है, धर्म भी ऐसी है, जब भी ऐसी है, आड़ा तिरछा जब होगा तो आड़ा तिरछा निकल जाएगा वो। तो आड़ा तिरछा प्रोग्राम नहीं, यहां पर कह रहे हैं कि प्रामाणिक कार्यक्रम जिसके अंदर आध्यात्मिक उन्नति हो। तो जब तक ये नहीं होगा, अगर जब आपका इस प्रकार से नहीं है तो उस जप के बावजूद भी आपका मन जो है उसके अंदर हमेशा गुस्सा भरा हुआ होगा और हर प्रकार की, यहां पर प्रभुपाद बता रहे हैं स्मॉल माइंडेडनेस। स्मॉल माइंडेडनेस मतलब समझते हैं, खरी बोली में कहते हैं लीचड़बंद। ये जब आप रोज जप कर रहे होंगे और आपका मन लीचड़बंद से भरा होगा, कबर भक्त लोग पूछते हैं ना कि क्या कैसे कैसे भक्त हैं, इतने सालों से माला कर रहे हैं तभी भी इनका भीषण बन नहीं गया, इसलिए नहीं गया, बिल्कुल सही पकड़ा है। ये जप करने वाले भक्त भी भीषण होते हैं, हाँ, ये ऑथोराइज प्रोग्राम फॉर स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट नहीं है। तो इस वजह से तो वो इसका भीषणबंद कहां से आ रहा है, द्वेष की वजह से, क्योंकि आपके जब से जो है आपका द्वेष समाप्त नहीं हो रहा, शुरू भी नहीं हुआ समाप्त होना। प्रभात बता रहे हैं जब कभी भी खाली नहीं जाएगा, कोई अगर ऐसा बोलता है ऐसा जब करने से कुछ नहीं होगा तो आदमी नास्तिक है, उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं, कुछ तो होगा पर शायद वो नहीं होगा जो आप सोचे बैठे थे, कुछ और ही होगा, ठीक है। आगे बता रहे, देखिए शुद्ध भागवत अर्थात शुद्ध भाग किस इस प्रकार भक्त श्रीमद भागवत की श्रीमद श्री भगवान की तरह होते हैं, इस प्रकार भक्त श्री भगवान की तरह होते हैं, भगवान नहीं होते तरह होते हैं, कैसे, सूर्यदम सर्वभूतानां वह समस्त जीवात्माओं के सखाएं, इसलिए यह धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ। भागवत धर्म की बात है, तथाकथित धर्म जो किसी एक व्यक्ति की विचारधारा को मानते हैं, ये देखिए अब सीधी सीधी बात हो रही है, किसी एक विचारधारा की बात मानते, देखिए अब कई बार कोई व्यक्ति ये भी कह सकते कि प्रॉपर नाम क्यों नहीं लिखते, डरते हैं क्या नाम लिखने से, लिखते क्यों नहीं भाई, ये बाबा वो जोगी वो सन्यासी ये 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 ब्रह्मचारी ऐसे ऐसे सीधा लिखते क्यों नहीं, इसलिए नहीं लिखते हैं कि जिसका नाम लिखेंगे वो तो नाशवान है, ये तात्पर्य 10,000 साल के हैं, उसका नाम लिख के क्या होगा, उसका नाम इसमें लिख के जो है वो 10,000 साल तक जीवित रहेगा, ये तो अभी 40 साल का 30 साल का मेहमान नहीं है वो। हाँ समझ रहे, ये वजह कई बार आप सोचते हो ना प्रभा डरते हैं क्या इनका नाम लिखने से, ये योगी ये बाबा ये वो क्यों नहीं लिखते, प्रभा कहते हैं भैया ये भागवतम शाश्वत है, इसमें इसका नाम आ जाएगा तो ये बिना बात का शाश्वत हो जाएगा, ये इस लायक नहीं किसका नाम जो है इन पन्नों में लिखा जाए, इसीलिए सिद्धांत बता देते हैं। और साथ ही साथ ये भी कि ऐसे ऐसे और नमूने आएंगे आगे आगे, सही तथागत धर्म जो मानते हैं, जो किसी एक व्यक्ति की विचारधारा को मानते हैं उनको भागवत धर्म कृष्ण भक्ति में कोई स्थान नहीं है उनका, ऑब्वियसली नहीं। यदि हम उन समस्त धर्मों की छानबीन करें जो शिव भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, यहां पे देवता का मतलब 33 करोड़ नहीं है, देवता का मतलब क्या होता है, जैसे आपने मेरी नौकरी लगा दी आप ही मेरे भगवान, इसे देवता कहते हैं। ऐसे देवता हमारे हमारे जिंदगी में जो हर साल एक नया बदलता है, आप ही मेरे भगवान हो क्योंकि आपने मेरा एडमिशन करा दिया, नहीं तो होने वाला नहीं था, फिर एडमिशन हो गया उसके बाद वो टीचर मेरा देवता, आप ही मेरे देवता हो क्योंकि आपके बिना मैं तो 5 जितने भी सब्जेक्ट थे सब में जो है 20 से नीचे ही थे, है ना। फिर उसके बाद जो है फिर जब निकल गया बंदा किस तरीके से लटक लटक के पास हो गया, एक हम उस दिन हम लोगों ने देखा भी था एक पोस्टर मतलब एक फोटोग्राफ था आया हुआ था फेसबुक में, बात दिखा देते और इसमें एक एक पत्ती लगी हुई इतना बड़ा सा उसमें लिखा हुआ इंजीनियरिंग, और जो सब लोग जो है सर झुका रहे गलती हो गई तो ऐसे तो पढ़ाई किस तरीके निपट गई किस तरीके से ना, तो वो फिर उसके बाद फिर मेरा नया देवता होगा, और मैंने नया देवता हूँ जो मेरी नौकरी लगा के देगा, फिर नौकरी लगा के देने के बाद क्या होगा, फिर मेरा नया देवता कौन, अब जो मेरा बॉस होगा, फिर उसके बीच में नया देवता और भी आ जाएगा जो मेरा एचआर मैनेजर होगा जो मेरी तनख्वाह और ये सब ये देखता है वो मेरा नया होगा, तो मैं देवताओं की कमी थोड़ी है, मैं वो क्या कर रहा है इंद्र वरुण चंद्र भाई होंगे अपने घर पे, मैं तो यही देवता काम आते रोज जो दिखते हैं मेरे को, ये इन देवताओं की बात हो रही है। उपासना करते हैं तो हमें पता चलेगा कि वे देश द्वेष से पूर्ण है अथा अशुद्ध है, कौन द्वेष से पूर्ण है, वो देवता भी मेरे और मैं और अशुद्ध है, ये प्रभात का मतलब मुख्य तात्पर्य है। तो ये जैसे अभी आप लोगों ने ये हम जैसे हम सुन भी रहे हैं तो ये यही यही चीज है कि भगवान एक है और जैसे आपने बताया और वो सबके हैं, गॉड इज वन एंड इज फॉर एवरीवन, पर वो अलग अलग तरीके से जो है रेस्पॉन्ड करते हैं, ये अपनी जगह भगवान भगवान की वाणी सब ऐसे ही एक है, पर एक का मतलब ये नहीं कि आपके चंगुल में आ जाएंगे, एक का मतलब ये है कि वो कई बार लोग ये पूछते हैं कि अरे भाई ये क्या सिस्टम है कि जैसे भगवान खुद ही बता रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करेगा उसका मैं ज्यादा ध्यान रखूंगा, ये क्या है, ये तो बड़ा भेदभावपूर्ण है ना, भगवान हो तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे भक्ति करो चाहे ना करो सबके लिए बराबर होना चाहिए, ये क्या मतलब है, भक्ति करूंगा तो तरफदारी करेंगे, ये तो वैसे ही हो गया दुनिया में दिखाई देता है कि भैया आप मेरी तरफ हो तो मैं आपकी तरफ हूं, आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो मैं आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा, नहीं बढ़ाओगे तो नहीं बढ़ाऊंगा, ये कोई भगवान है, ये क्या सिस्टम है, हाँ यही तो बात है, बिल्कुल सही बता रहे, अरे कमाल है, एक आदमी है अब ये जैसे मान लीजिए ठीक है ठीक है, अब मैं ये अब इसको मैं बोलता हूं हरे कृष्णा कुछ बोल रहे हैं, हरे कृष्णा कुछ बोल रहे हैं, अब मैं आप लोगों से बोलता हूं हरे कृष्णा, ये तो आप लोग बड़े भेदभाव वाले व्यक्ति हो, मैं बड़े भेदभाव वाला व्यक्ति हूं, बिल्कुल ऐसे ही लॉजिक है, अरे भैया अगर आप मेरे को हरे कृष्ण बोल रहे हो मैं आपको हरे कृष्ण बोल रहा हूं तो ही तो इसको रिसिप्रोकेशन कहेंगे, मैं इसको हरे कृष्ण बोल बोल के मर गया, मैं हरे कृष्ण बोल बोल के ये भी ना बोला, तो ये क्या है, ये समान है। मैं किसी के लिए कुछ करता रहूं, कुछ करता रहूं, कुछ करता रहूं, वो मेरे लिए कुछ भी ना करे, तो ये समान है। वो मेरे लिए उल्टा है बिल्कुल सिस्टम। अगर मैं उसके लिए कुछ करता हूं, मेरे लिए कुछ करता है, बात समझ आती है। मैं उसके लिए कुछ करता हूं, मेरे लिए कुछ नहीं करता, तो पत्थर क्या लेगा वो? ये क्या है, निर्जीव है ना, जमीन तो नहीं बोल रहा है, इसके मुंह में जबान नहीं है। तो जो ऐसा सोचता है कि भाई भगवान सबके लिए समान होने चाहिए, उसको भगवान नहीं पत्थर चाहिए बेसिकली। जिसके अंदर जान होगी, जिसके अंदर आत्मा रूह कुछ भी होगा, उसके अंदर जज्बात होंगे, तो उसका ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा। और जिसके अंदर नहीं होंगे तो वैसे ही बराबर रहेगा, पत्थर के सबके लिए बराबर है। सिर्फ फोड़ दो, आप फोड़ दो, आपका भी फूट जाएगा, फोड़ देगा अपना फूट जाएगा, ये होती है बराबरी। ऐसी बराबरी चाहिए भगवान की। हाँ समझ रहे, तो ये बिल्कुल ये होते हैं इंडिविजुअल विचार। ये जो लास्ट लाइन लिखी है प्रभुपाद ने यहां पर, ये छानबीन करे तो उसमें भगवान का, सॉरी ऊपर वाला, तथाकथित धर्म जो किसी एक व्यक्ति की विचारधारा को मानते, ये विचारधारा मेरे हिसाब से भगवान ऐसे होने चाहिए, सबके लिए बराबर होने चाहिए। भगवान जब सब भगवान के लिए बराबर नहीं है, तो भगवान सबके लिए कैसे बराबर हो जाए? तो ये मुद्दे की बात है। तो उसी टाइप से भगवान अलग से रिस्पॉन्ड करते हैं, भगवान का, भगवान की वाणी भी ऐसे थोड़ा सा मोड़ ऐसे अलग से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे ये मान लीजिए हम यही हम सुन रहे हैं अभी बैठ के, ये भागवत चर्चा हो रही है, ठीक है, ये नहीं क्या सोचेंगे ये कपड़ा क्यों रखा हुआ है, सोच समझ के रखा हुआ, वो दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है इसमें, श्रवण, ठीक है। इसके दो फायदे, हम सुनते हैं भागवत श्रवण करते हैं भगवान की वाणी, जैसे भगवान को हम सुन रहे हैं, भगवान को सुन रहे हैं, दो चीज हो सकती है, आत्मा का शुद्धिकरण, यानी कि वही सेम चीज शुद्धिकरण, आत्मा शुद्ध है पर उसके ऊपर अभी आवरण है तो उसका निकालने की जरूरत है, और हर प्रकार के और भय से छुटकारा मिल जाता है। चलो जी, ये तो सुनने से हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, तो इतना मिले, सब लोग सुन रहे हैं, जैसे भी सुन रहे हैं, सुनते सुनते सो रहे हैं, सोते सोते सुन रहे हैं, जैसे भी है, तो ये हटाना इसको, ये भागवतों में बता रहे भगवान 12वें स्कंद। अब कोई अध्ययन करता है, अध्ययन का मतलब क्या है, गहराई से सुनना, उसको भी अध्ययन कहेंगे, उससे क्या होगा, अब अलग हो गया, वेद अध्ययन का फल मिल जाएगा जी भागवतम सुनने से। वेद अध्ययन का क्या फल होता है, वेद होता होगा जी, कोई वेद अध्ययन का फल मिल जाएगा, वो तो मिल जाएगा, पर ये तो बताओ क्या मिलेगा, पता चले कि आपको कोई जो जाली माल चिपका दिया बोल के वेद अध्ययन का फल है। वेद अध्ययन का फल होता है भगवान भागवदगीता में 15 के 15 श्लोक में बता रहे, 15 अध्याय में, वेदेश्य सर्वे अहमेव वेद, वेद अध्ययन से क्या होता है मेरे को जान पाते हैं, तो इसे तो वेद अध्ययन करके तो भागवत पढ़ लोगे, सुन लोगे, अध्ययन कर लोगे, तो भी भगवान को जान जाओ, ये कहने का मतलब है क्या। बट जैसी थोड़ा सा अलग सुनते हैं ना वेद अध्ययन, अच्छा अच्छा कुछ नया मिलने वाला है, और कौन सा नया जी आपको, ठीक है। और दूसरा क्या है, सारी इच्छाएं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति, सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी इच्छाएं सब कुछ भी हो सकती है, भौतिक हो सकती है, आध्यात्मिक हो सकती है, जो मर्जी हो आपके ऊपर। अब क्या होगा, नियंत्रित मन से अध्ययन, ये तीसरा स्तर, वही सुनना चल रहे, भगवान सबको देखे, सब सुन रहे हैं, एक सुन रहा है, एक अध्ययन के हिसाब से सुन रहा है, और एक मन को नियंत्रित करके सुन रहा है, करके सुन रहा है, ये नहीं कि सुन के मन नियंत्रित हो रहा है, नहीं, वो अलग बात है, उसमें उसका क्या है, अगर सुन के आपका नियंत्रित मन नियंत्रित हो जाता है, आपका क्या क्रेडिट है उसके अंदर, उसमें तो श्रवण की महिमा, आपका क्या है, आपने क्या जोर लगाया उसके अंदर, आपको भी फल मिले, आपने किया क्या है फल लेने के लिए, ये हो रही है बात, जब आपने अपनी तरफ से कुछ मेहनत की है, हाँ मैंने मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, कोशिश किया, इसको भगवत धाम की प्राप्ति, ये 12वां स्कंद, ये सुनने सुनने में फर्क है, क्यों, यही भगवान के रिसेप्शन फर्क है, भगवान भगवान में फर्क व्यक्ति को मद्देनजर रखते हुए भगवान जो है अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो करेंगे क्योंकि वो भगवान है। हाँ समझ, काफी समय तो बहुत हो गया, बस तो मैं कुछ भी किसी को प्रश्न तो पूछ सकती। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का, बहुत ही व्यावहारिक और प्रासंगिक प्रश्न है कि जैसे अभी हमने चर्चा की कि धार्मिक अलग अलग प्रकार के, हरे कृष्ण आपसे निवेदन है जो पीछे बैठ के बात करे, बात न करनी तो व्यासासन पे आ जाए, तो पीछे बता दीजिए इनको, इनको बात करनी इधर आ जाए, तुमको बात करनी इधर आ जाइए, यहां पे एक ही बंदा बोलेगा यहां पे हमें जो यहां बैठे। तो देखिए मैं पूरा प्रश्न भूल गया, क्या था क्या प्रश्न था के अंदर भी अलग अलग गुण देखते हैं, जैसे सीधी बात ही है। तो ये हमने बताया कि जैसे अलग अलग धर्मों में, जैसे हमने बताया हिंदू धर्म में जो इसकी कई प्रजातियां कई नस्लें मिलती हैं, मुसलमान धर्मों में कई मसले मिलती हैं ऐसे, तो उस टाइप से हर जगह मिलती है। ये कह रहे थे ये तो अभी कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर भी कई नस्लें मिलती हैं, बाकी ये इसमें है कृष्ण कॉन्शियसनेस में कई नस्लें मिलती हैं। हाँ बात सच है, मिलती हैं। अब इसके इसके दो वजह, दो वजह हैं, एक वजह ठीक है एक वजह गलत है। अगर वो टेस्ट के आधार पर है, भगवान को अलग अलग स्वाद देने के आधार, भगवान के रस बेसिकली, कि भगवान को कोई एक रस पसंद है, हर रस पसंद है भगवान को ऑब्वियसली, तो एक रस में कोई भगवान की सेवा कर रहा है तो उसका रस दूसरे के रस से अलग है, तो यहां पर जो है अलग हो सकता है, पर मकसद एक तो एक भी होगा। अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहने का मतलब है। तो यहां ठीक है, यहां ठीक है, क्योंकि जीव मात्र में जो है दो जीव एक बराबर नहीं है, हर दो जीव सच्चिदानंद ये ठीक है, पर फिर भी हर दो जीव का जो स्वाद है, हर जिसका जो रस है देखने का तरीका वो अलग है, भगवान को सेवा करने की वृत्ति वो भी अलग है, और भगवान का उस व्यक्ति को सामने से प्रतिदान देना वो अलग है। तो इस वजह से जो है अलग हो सकते है, और ये भक्ति रसामृत सिंधु में ग्रंथ में बताया जाए, यहां तक ठीक है, पर जहां पर इस रस को छोड़ के बाकी रसों में जो है अलगाववाद है तो अलगाववाद है, कि हम आपसे अलग इसलिए हैं क्योंकि हम अलग दिखना चाहते हैं, या हम आपसे अलग इसलिए क्यों अलग रहना चाहते हैं, हमारा तो जी थोड़ा अलग ही सिस्टम ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या है कि हम और वो अलग इसलिए हैं, हम अपने आप को अलग क्यों रखना चाहते हैं, थोड़ा तह में जाएंगे तो ये निकल के आएगा आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, जो हम कर रहे हो सही कर रहे हो, जो यहां बदल रहे, तो ये गलत है, जो ये लेके चल रहा है कि आप गलत कर रहे हो और मैं सही कर रहा हूं, तो इसका मतलब वो भी गलत ही है, क्योंकि गलत और सही इस तरह से जैसे हम देखते हैं तो इसकी बुनियाद जो है ये भौतिकता में होती है, इसको कहते हैं रिलेटिविटी, रिलेटिविटी कहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में सही जो है कोई चीज जो जिसको हम सही कहते हैं, सही ना कहते सही है सही है सही है, उसकी बुनियाद गलत पे होती है, उसको उसकी वो गलत की बैसाखी चाहिए। अब आपको समझाते हैं कैसे, जैसे देख लीजिए एक है आग और दूसरी है राख, ठीक है, राख की बुनियाद क्या है, आग आग नहीं जलेगी तो राख नहीं बनेगी, पर आग आग है वो तभी तक नहीं, तब तक वो अपने आप को साबित नहीं कर सकता जब किसी चीज को राख ना कर सके, समझ आ रही है बात, वो आग आग ही क्या जो किसी चीज को राख ना कर सके, तो आग की बुनियाद क्या हुई, राख, सारी दुनिया ये मानी बैठी है कि राख की बुनियाद आग है, अरे तो आग की बुनियाद भी राख है, इसे कहते हैं सापेक्ष जगत, इसीलिए इस जगत में जो चीज हम तथाकथित रूप से सच मानते हैं उसकी बुनियाद झूठ पे टिकी हो, झूठ की बैसाखी पे होगी, ऐसे होते हैं, इसीलिए जो हमारे आचार्यगण बताते हैं जो तथाकथित ये जैसे महाप्रभु बताते हैं यही भानो यही मंदो यही सब भ्रम, ये अच्छा है ये बुरा है ये सही है ये गलत है सब भ्रम सब गलत है, इसीलिए सिर्फ आध्यात्मिक सत्य को छोड़ के बाकी सारे तथ्य, एक होता है सत्य, एक होता है तथ्य, एक होता है ट्रुथ, एक होता है फैक्ट. ऑल दिस सो कॉल्ड फैक्ट्स आर अल्टीमेटली लिविंग लाइज, क्योंकि इनकी बुनियाद किसी दूसरे पर टिकी हुई है, अपने बूते पे नहीं है. सत्य का मतलब है जिसे को किसी और चीज की जरूरत नहीं, अपने बूते पे खड़ा हो सकता है. इसीलिए भगवान को सत्य कहा जाता है. हाँ, समझ रहे? इस दुनिया में किसी चीज का कारण होता है और किसी चीज का उसका एक अंजाम होता है, एक वजह होता है और एक नतीजा होता है. तो जिस चीज का कोई नतीजा निकल रहा है इसका मतलब उसकी वजह है, तो वो उस पर डिपेंडेंट है. और अगर कोई वजह है अपने आप में तो नतीजा होगा. बाप है तो इसका मतलब है बाप की बुनियाद बेटे पर टिकी हुई है. ऐसा नहीं सिर्फ बेटे की बुनियाद बाप पर टिकी हुई है. बेटा अपना अपने आप को चौधरी जी, शर्मा जी, वर्मा जी, मिश्रा जी कहता, गुप्ता जी कहता है, तो बाप का नाम चल रहा है. तो बाप का बाप की बाप बाप कहलाता है बेटे की वजह से. तो ये रिलेटिविटी, तो इसके लिए तो वो तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते जो बेटा है वही सत्य है, बाप सत्य नहीं है. बाप ही सत्य, बेटा सत्य नहीं, दोनों झूठे इस मामले में. इसलिए रिश्ता झूठा इस बिना पर, क्योंकि कोई भी जो ये रिश्ता है, कोई भी पहचान है, कोई भी बुनियाद है, अपने बूते पे नहीं खड़ी हो सकती. इसको सहारा चाहिए, ये अंडरस्टैंड. सत्य क्या है, क्या असत्य है इस दुनिया में, जो है सारा उस हिसाब से सत्य है. दोनों चीजें हैं, पर पहला चीज कम है, दूसरे में ज्यादा है. उसमें सिर्फ इस तरीके से कह सकते हैं, जिनका उनका जो सवाल था कि देखिए ये ईसाई धर्म है, कोई भी धर्म है दूसरे भागवत धर्म को छोड़ के, इन धर्मों में खोट है कि धर्म के पालन करने वाले में खोट है? अब धर्म में खोट होता नहीं है. धर्म में खोट इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर किसी धर्म को एक पर्टिकुलर वक्त के लिए दिया जाए तो वो बांधे जाते हैं, तो ऐसे में धर्म खोट कह सकते, बस ये खोट कह सकते. जैसे सनातन धर्म का मतलब क्या है, कि जो सनातन काल से चलता है. आप समझ रहे? जैसे ही आपने बोला कि इस काल से शुरू हो रहा है और इस व्यक्ति के लिए है, इसके लिए है, इसका मतलब उसके एक सीमाबद्ध हो गया. जैसे जिस भी चीज को आप नाप सकते हैं वो माया कहलाती है, जो नप गई वो माया है. इसीलिए अगर आप कहते हैं कि ये धर्म जो है ऐसे लोगों के लिए है, ये धर्म ऐसे लोग, अरे धर्म है तो सबके लिए, भगवान है ना धर्म, भगवान सबके लिए, ये क्या मतलब है? ये वाले भगवान का रूप इसके लिए, इसके लिए, तो इसीलिए इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कंसेप्ट आता है. ये कंसेप्शन ऐसा जो मत है, ये तथाकथित हिंदुवाद में भी, कि ये वाला धर्म जो है इस प्रकार के लोगों के लिए, ये बहुत ही नीचे नीचे निचले गिरे हुए लोग हैं, तो इनके लिए जो तांत्रिक वाद चलेगा, तंत्र चलेगी इनके लिए. इसका मतलब क्या, अब अगर तंत्र अगर शाश्वत सत्य है तो सबके लिए चलना चाहिए. समझ रहे बात को? ये कहने का मतलब है शाश्वत धर्म, भागवत धर्म का मतलब है जिसके अंदर, इसलिए कह रहे हैं ऐसा कोई धर्म भी जो है उसको उपधर्म कह सकते हैं. हाँ, कि जो चल रहा है उसके सिद्धांत ठीक है, पर फिर भी ना कुछ जगह पे ना, मतलब इनके लिए, अरे इसका मतलब गड़बड़ है, पूर्ण रूप से नहीं लागू होगा, कहीं 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 ऐसे अटकेगा, ये कहने का मतलब. और फिर उस और अच्छा, अब ये भी जो चीज है इसको चलाने के लिए अपने आप में धर्म क्या है? अपने आप में ठीक है, चार चीजें हैं सत्यता पर, इसको पालन कौन करके? तो जो धर्म को पालन करने वाला है उसके हाथ में. जैसे अक्सर लोग बोलते ही हैं ये चीज है ना, अरे धर्म की रक्षा कौन करेगा, धर्म की रक्षा कौन करेगा, धर्म की रक्षा कौन, केशव मैं मुझे कई बार बताते धर्म की रक्षा कर, धर्म की रक्षा कौन करेगा, तुम पालन कर लोगे तो अपनी अपेक्षा हो जाएगी, और कैसे धर्म की रक्षा होगी, डंडे तलवारों से होगी धर्म की रक्षा. तो ये कहने का, तो जो बंदा उसको पालन कर रहा है, जो उसको सिखा रहा है, अगर उसको उसका पूरा का पूरा मकसद क्लियर नहीं है कि क्यों ऐसा है, तो सर उसके साथ छेड़छाड़ करेगा, खराब करेगा उसको. हाँ, अगर 100% चल जाएगा तो, क्योंकि बनाया तो उससे वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो भगवधाम चला जाएगा. ये बात सच है, ऐसा नहीं कि कोई भगवधाम नहीं जा पाएगा, पर प्रॉब्लम जो यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ज्यादातर केस में उसको समझाने वाला कोई नहीं होता, ये धर्म ऐसा है तो क्यों है. कई बार जैसे होता ही है, जब बहस होती है, जैसे मान लीजिए कई बार जैसे स्कूल में, कॉलेज में या ऑफिस में, कई बार हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो मुसलमान होते हैं, ईसाई होते हैं, वैसे तो पहले तो छुप ही रहते ज्यादा, वैसे तो अक्सर अगर अच्छे दोस्त है तो ज्यादा बात नहीं होती, पर फिर कई बार भीड़ ही जाती है कि तुम्हारे में ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो ये भी निकालते तुम्हारे में ऐसा क्यों है। तो वही है कि ना उसके पास कोई सटीक जवाब होता है, ना हमारे पास कोई सटीक जवाब होता है। कि जब तक जो उसकी बारीकी और उसकी बारीकी समझने का मतलब है, जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ नहीं आएगी, उल्टा सिस्टम। भौतिक चेतना क्या समझाती है, देखो ऐसा है, सब कुछ ठोक बजाय करना चाहिए, पहले ना तो समझ लो, परख लो पहले, उसके बाद हाथ डालो। तो यहां सिस्टम उल्टा है, पहले आप हाथ डालोगे तब समझ आएगी। एक श्रवण होता है, श्रवण को आप पठन भी कह सकते हैं। श्रवण पठन कलयुग में जो है बराबर है, ठीक है। शब्द पे मत जाइए, शब्द का जो मर्म है उसमें जाइए। श्रवण का मतलब सुनना। तो पहले जो है अध्ययन जो है वो श्रवण से ही होता था, पहले अध्ययन करने के लिए अलग से लिखते नहीं थे, कुछ लिखावट थी नहीं पहले, समझ। भौतिक जगत मतलब तथाकथित आधुनिक जगत में, आधुनिक जगत में कोई वक्ता जो लिखा पढ़ा हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं, उसको लिटरेट मतलब साक्षर जो भी व्यक्ति है उसको कहते हैं कि ये बंदा जो है, एक होता है पढ़ा लिखा मतलब जो लिख सकता है पढ़ सकता है, और दूसरा व्यक्ति है जो पढ़ और लिख नहीं सकता, अनपढ़, ठीक है ना। तो कहते हैं जो अनपढ़ है वो निम्न कोटि का है, और जो पढ़ और लिख सकता है वो उच्च कोटि है। पर वैदिक प्रणाली के अनुसार जो पढ़ने और लिखने वाला, जो आदमी लिखने पर विश्वास करता है वो निम्न कोटि का है, जो सुन के समझ जाता है वो उच्च कोटि का है। आज समझे सिस्टम बिल्कुल अलग है। सिस्टम वैदिक सिस्टम जो है तो सुन के समझ जाए, सुन के अध्ययन हो जाए, सुन के याद हो गया, समझ में भी आ गया, क्या करना है ये भी हो गया, उसका कर भी लिया, इसे उच्च कोटि का कहते। और जिसको लिखने की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब क्या है, जैसा आपने बताया उसकी जो धी है, उसकी जो बुद्धि है वो मोटी है, इसे उसको लिखने की जरूरत पड़ती है। इसलिए राइटिंग इज कंसिडर्ड एडवांसमेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड, बट राइटिंग इटसेल्फ इज अ प्रिमिटिव वे ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू वेदर्स। हाँ, इसलिए नहीं था क्योंकि इसको नीचा समझा जाता था, लिखने वाले आदमी को नीचे समझते थे, लिखने पे आ गया ये। ये तो अक्सर सुनने को मिलता है, ये तो सर ऐसा थोड़ी है कि भगवत गीता में प्रयास हो कृपा होगी तो हो जाएगा, वो तो सब कुछ है। किसी को आप मंदिर बुलाओ तो बोले कृपा, भगवान कृपा करेंगे तो मंदिर आएंगे, तो ये पहले भगवान मेहनत करेंगे, तो बात तो सारी हुई होगी ना कि पहले आप भगवान से मेहनत करा लो उसके बाद। तो ये अक्सर लोग, ये तो ये कोई नई बात नहीं, ये तो शाश्वत काल से जो आदमी जो बेसिकली जो लेजी आदमी होते हैं, जो मतलब जो भगोड़े दरअसल जो होते हैं, तो उनका यही, उनके पास यही हथकंडा होता है कि भगवान कृपा करेंगे, भगवान की कृपा करने पे बैठे हुए, तो साफ साफ बोल दीजिए आप पे भगवान कृपा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप पे कृपा नहीं करेंगे, सीधा ही बोल दीजिए, चक्कर ही करो। आपको क्यों लगता है कृपा, आप पे कृपा नहीं करेंगे, मेरे को बताया आपको कृपा नहीं करेंगे, पूछे कैसे बताया, तो बोले कैसे बताया, मेरे को बताया भगवान ने मेरे पर कृपा करिए इसलिए बताया कि आप पे कृपा नहीं करेंगे। आप इन लोगों के लिए तो यही है जवाब, कुछ सूरतों में यही जवाब। अरे वो सब ठीक है, उसको नहीं, मोटे दिमाग वाले आदमी को नहीं समझ आएगा ना, ये भक्तों के लिए। हाँ वही, एक्चुअली बात तो यही है कि वो कृपा करेगा भगवान पे, बाकी यहां पर गीता लिखे भगवान तो यही कह रहे हैं कि भैया मेरे को, मैं क्या कृपा करूंगा तुम पे, तुम इतने ऊपर उठ चुके हो, तुम ही कर दो मेरे पे कृपा आके। तुम ही कर दो मेरे गीता, ये गीता सुन के मैं तो बोल 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 के थक गया, 5000 साल से बोलता आ रहा हूं, जबान दुख गई मेरी, अब तुम ही कृपा कर दो मेरे पे सुन के। लेकिन है तो यही
जी, भगवान
जी
भगवान को पता था भगवान आए, भगवान ने विष्णु भेजा, अपने भक्त को भेजा, तुम जब कृपा करो भगवान कृपा नहीं कर सकते, जब तक कृपा नहीं करेंगे तो भगवान नहीं कर सकेंगे। तो जो व्यक्ति गीता लेने वाले हैं वो जो देने वाला वो जब तक कृपा नहीं करेगा तो भगवान कृपा नहीं।
हाँ ये बात समझे, एक्चुअली भगवान क्यों डायरेक्टली कृपा नहीं करते ये भी है। तो मुझे बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, ये मुद्दा उठाया इसके अंदर कि भगवान डायरेक्ट कृपा नहीं करेंगे, भक्त कृपा करेगा, वजह क्या है, भगवान क्यों नहीं कृपा करेंगे, क्या ऐसी वजह है? तो मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती भगवान को इसलिए कृपा नहीं करेंगे, क्या वजह? इसलिए कृपा नहीं करेंगे कि आपको भगवान की शक्ल अच्छी नहीं लगती। कृपा करने के लिए वही व्यक्ति आप पर कृपा कर सकता है जिस व्यक्ति को आप फेवरेबली देखते हो। आप समझ रहे हैं, हम भगवान से कृपा क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम भगवान से द्वेष करते आए हैं, तो कैसे कृपा ले लगा एकदम से आदमी? कृपा और द्वेष बिल्कुल उल्टी चीज है। आप कह रहे हो कि मैं भगवान से द्वेष करता हूं, मेरे को भगवान की कृपा से कैसे चला जाएगा? आप भगवान के पक्ष में आए हो तब भगवान आपका कृपा कर सकता है, भगवान के विपक्ष में खड़े हो गए जो आपको भगवान की कृपा चाहिए, ये चीज इस वजह से भगवान डायरेक्टली कृपा नहीं। इसीलिए एक वाया मीडिया चाहिए होता है, भगवान एक बीच का एक व्यक्ति भेजते हैं जो है तो भगवान का आदमी, मिलता आपसे आपका बन के बिचौलिया जिसे कहते हैं, तो भक्त जो है वो बिचौलिया का काम करते हैं, तब जाके वो कृपा ट्रांसफर हो पाती है। तो ये टेक्निकल है, तो ये भक्तों के लिए ये ज्ञान समझ लगे। बाहर वाले आदमी को तो अगर ऐसा ही है, अगर ढीठ आदमी है यही बोले आपको नहीं कर, आपके कृपा बिल्कुल नहीं करने वाले, मेरे को कल रात को सपना आया था भगवान ने बताया मेरे को, बस आपको सपना आ सकता मेरे को नहीं आ सकता, सपना आपके भी सपने आते हैं, भगवान आज आपने भगवान ने ये बोल दिया वो बोल दिया, मेरे को भी आ गया कल। ठीक है, तो यही बस बात करते, बहुत ज्यादा अधिक समय हो गया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की भक्तवृंद की ताई गोष्ठनाथ के मनंदे प्रभात।